भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1। अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय। श्लोक संख्या 45 से 47। तो 47वां श्लोक बोर्ड पर लिखा है, तो इसको उच्चारण करने से पहले हम 45 और 46 का अनुवाद पढ़ते हैं। एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नार्हसि कल्याणीं इमां त्वं दीनवत्सला। तुम्हारी छोटी बहन बेचारी देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है और वह लाड़ प्यार से पाले जाने योग्य है। तुम दयालु हो अतः तुम्हें इसका वध नहीं करना चाहिए। निसंदेह यह तुम्हारे स्नेह की पात्र है। श्लोक संख्या 46। श्री शुक उवाच एवं ससामभिर्वेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुण नान्यवर्तत कौरव्या पुरुषादाननुव्रता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे गुरुवंश में श्रेष्ठ कंस अत्यंत क्रूर था और वास्तव में राक्षसों का अनुयायी था। अतएव वसुदेव के सदुपदेशों से उसे ना तो समझाया बुझाया जा सकता था ना ही भयभीत किया जा सकता था। उसे इस जीवन में या अगले जीवन में पाप कर्मों के फलों की कोई चिंता नहीं थी। श्लोक संख्या 47। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभि प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत। निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत। निर्बन्धं तस्य तं ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढुम् इदं तत्रान्वपद्यत। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की निर्बंधम करने के संकल्प को तस्य उस कंस का तम उस संकल्प को ज्ञात्वा जानकर विचिन्त्या गहराई से सोचकर आनक दुंधुभिः वसुदेव प्राप्तम आया हुआ कालम आसन्न मृत्यु संकट को प्रतिव्योढ़ुम ऐसे कार्यों से रोकने के लिए इदम यह तत्र वहां अन्वपद्यता अन्य उपायों को सोचा। अनुवाद। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है तो उसने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उन्होंने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। कृपया दोहराएं। जब वसुदेव ने देखा कि कंस अपनी बहन देवकी को मार डालने पर तुला हुआ है तो उन्होंने अपने मन में गंभीरता पूर्वक सोचा। मृत्यु को आया हुआ देखकर उन्होंने कंस को रोकने का दूसरा उपाय सोचा। तात्पर्य। यद्यपि वसुदेव ने देखा कि उनकी पत्नी देवकी के मारे जाने का संकट उपस्थित है किंतु उन्हें अपने कल्याण का भरोसा था क्योंकि उनके जन्म के समय देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थीं। अतः उन्होंने देवकी को बचाने की दूसरी युक्ति सोची। ओम ज्ञानस्तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। तो यहाँ पर वसुदेव जी ने इसमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि वसुदेव जी ने कंस को बहुत सारे उपदेश दिए ताकि वो देवकी को मारने का जो उसका इरादा है उससे वो पीछे हट जाए, लेकिन यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि कंस किसी प्रकार के उपदेश से ना तो शांत होने वाला था ना ही भयभीत किया जा सकता था। वो बिल्कुल तुरा हुआ था देवकी का वध करने के लिए, अपने स्वार्थ की अपनी मृत्यु से बचने के लिए। तो अब वसुदेव यहाँ पे गंभीरता से सोच रहे हैं, देवकी को मारने पर कंस तुला हुआ है ऐसा देखकर गंभीरता पूर्वक वसुदेव सोच रहे हैं और कोई दूसरा उपाय कर रहे हैं। तो प्रोपाई तात्पर्य बताते हैं कि यद्यपि वसुदेव ने देखा कि उनकी जो पत्नी है देवकी उन पे बहुत भारी संकट उपस्थित है, परंतु उनको अपने कल्याण का भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि उनके जन्म पर देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी और इसीलिए उस भरोसे के बल पर वो दूसरा उपाय कर पा रहे हैं, वो हताश नहीं हो रहे। तो अब देवताओं ने उनके जन्म पर दुंदुभियां बजाई थी तो इसलिए उनका नाम है, एक और नाम भी है आनक दुंदुभि। यहाँ पे शब्द आता है ज्ञात्वा विचिन्त्यानक दुंदुभि। आनक दुंदुभि शब्द से इस श्लोक में वसुदेव जी का संबोधन किया गया है। तो ऐसा नवे स्कंद में आता है, जब अलग अलग राजाओं की वंशावलियों का वर्णन आता है तो जब वसुदेव जी का प्राकट्य होता है तो उसमें बताते हैं कि जैसे ही वसुदेव जी का प्राकट्य होता है तो बहुत सारे देवी देवता बहुत खुशी में जश उत्सव मनाते हैं, दुंदुभियां बजाते हैं, इसलिए उनका नाम आनक दुंदुभि पड़ जाता है। क्यों बजाते हैं? क्योंकि बहुत ही वो प्रसन्न होते हैं कि अभी इनके इनके घर में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे, तो इसीलिए वो बहुत ही उत्सव का मौका उत्सव मनाते हैं कि भगवान को जो प्रकट कराने वाले हैं आज उनका प्राकट्य है, तो इसलिए वो बहुत ही दुंदुभियां बजाते हैं। तो इस छोटे से तात्पर्य में मैंने विचार किया कि एक भक्त को पूरा विश्वास होता है कि उसका कल्याण होगा। वसुदेव जी को भी पूरा विश्वास था, यद्यपि कितनी भी कठिन परिस्थितियां थी उनके समक्ष उपस्थित, कि अभी थोड़े ही समय पूर्व विवाह हुआ है और जो पत्नी का भाई है वही पत्नी को मारने जा रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी विपदा है। लेकिन इसी कठिन परिस्थिति में भी वो अपना संतुलन बनाए हुए हैं और समाधान ढूंढ रहे हैं और उनको पूरा भरोसा है कि उनका कल्याण होगा। तो ऐसे ही हम ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है एक भक्त का कि वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो हमेशा उसको आशा हमेशा रहती है, वो आशाबद्ध होता है एक भक्त। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं उत्साह निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसीदति। भक्ति में प्रगति करने के जो एक सूत्र के रूप में उन्होंने 6 बातें बताई हैं, उनमें से एक बहुत ही मुख्य बात है निश्चय। तो निश्चय को श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं पूरा भगवान में पूरा कॉन्फिडेंस कि निश्चित रूप से मुझ पर कृपा होगी, इस बात पर पूरा विश्वास, और इस विश्वास के आधार पर ही भक्त हमेशा उत्साहित भी रहता है और हमेशा और धैर्य भी बना के रखता है। धैर्य बनाकर वो भगवान की सेवा में उत्साह से लगा रहता है कि निश्चित रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो ये लक्षण श्रद्धा का लक्षण है और श्रद्धा को भक्ति का बीज बताया गया है। श्रद्धा जो है भक्ति का सबसे पहली सीढ़ी है और चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। कि जो व्यक्ति श्रद्धावान होता है उसी को भक्ति प्राप्त होती है, वही भक्ति का अधिकारी है, और जिसकी जितनी जितनी श्रद्धा है उतना उतना वो भक्ति में प्रगत है। अगर श्रद्धा कम है तो कनिष्ठ है, कनिष्ठ भक्त माना जाता है। अगर श्रद्धा बीच में है, ना ज्यादा कम है ना बहुत ज्यादा है, तो उसे मध्यम भक्त बोलते हैं, और जब श्रद्धा बहुत प्रगाढ़ है तो उसे उत्तम भक्त बोला जाता है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो ये श्रद्धा जो है कि भगवान की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी, और क्योंकि भक्ति हम कर रहे हैं तो हमारा कल्याण निश्चित है। श्रद्धा का जो परिभाषा है ये भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कि श्रद्धा का अर्थ यह है कि पूर्ण विश्वास है कि केवल एकमात्र कृष्ण की भक्ति क्यों मैं कर रहा हूं तो मेरा सारा सब कुछ अच्छा होगा, सर्व कर्म कृत है, सारी चीजें सही सही हो जाएंगी। तो ये श्रद्धा है। तो एक भक्त को ये बहुत ही, ये भक्त का सबसे बड़ा धन है श्रद्धा, भगवान की कृपा में और भगवान के भक्तों की, आचार्यों की, गुरुजनों की कृपा में पूरी श्रद्धा है। हम देखते हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी जब चैतन्य चरितामृत का संकलन करते हैं तब उनकी आयु बहुत ही ज्यादा होती है, तकरीबन वो 90 वर्ष के हैं, परंतु उनको ऐसा लगता है कि वैसे तो उनमें कोई योग्यता नहीं है, परंतु उनको सारे वैष्णवों ने आदेश दिया है और मदन मोहन जी की कृपा है, तो वो इतना महान ग्रंथ जो हमारे पूरे वैष्णव साहित्य का बताया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है, उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। तो भक्तों को पूरी श्रद्धा होती है कि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव है, और जो दिखने में संभव है वो भी असंभव हो जाएगा अगर भगवान की कृपा ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर वसुदेव जो महान भक्त हैं, जिनके द्वारा स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जय श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, शिला प्रभुपाद की, तो उनको भी पूरा विश्वास है कि दिखने में बहुत ही कठिन परिस्थिति जरूर है लेकिन फिर भी उनका कल्याण होगा, इसलिए वो अपना प्रयास करते रहते हैं उत्साह से। तो ये जो गुण है श्रद्धा और भगवान में, भगवान की कृपा में पूरा विश्वास होने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा भी बताया जाता है, एक वरिष्ठ वैष्णव से हम सुन रहे थे कि भक्ति का मार्ग इतना महान है और इतना उत्कृष्ट है, जैसे अलग अलग आध्यात्मिक प्रगति करने के अलग अलग योग मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग इत्यादि, परंतु भक्ति का मार्ग इतना इतना पूर्ण है कि हमारे एक महान आचार्य श्रीधर स्वामी बताते हैं कि अगर कोई आंख बंद करके भी इस मार्ग पर चले, दौड़े भी, तो भी वो उसको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। हाँ, 11th कैंटो में ऐसा, 11th स्कंद में भी आता है ये। तो भक्ति का ये जो ये श्रद्धा एक भक्त को होती है कि भक्ति करने से सब चीजें सफल होंगी। तो और भी बहुत सारे इसके प्रमाण हैं, और क्यों भक्त को ये श्रद्धा होती है इसका, भगवान क्योंकि भगवान स्वयं इसकी अपने भक्तों को यह आश्वासन बार बार दिलाते हैं कि आप भक्ति कीजिए और बाकी सब चीजों का ध्यान मैं रख लूंगा। और इसके लिए भगवान भगवद गीता में बहुत सारे श्लोकों की द्वारा भक्तों को यह आश्वासन देते हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भक्ति कर रहे हैं पूरी दृढ़ता से, पूरे हृदय से, पूरे मन को मेरे में लगाते हुए और 2400 घंटे लगे हुए हैं, उनको जो भी चीजों की कमी है वो मैं दूंगा, और जो भी चीजें उनके पास आ गई हैं उनकी रक्षा मैं करूंगा, योग क्षेमम वहाम्यहम। तो अगर भगवान ऐसी गारंटी देते हैं तो उससे बड़ी गारंटी फिर क्या है? क्योंकि बताया जाता है मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्ण किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो फिर उसका कोई बाल विभाका नहीं कर सकता। तो भगवान पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं। और श्री संप्रदाय में, अभी हम साउथ इंडिया की यात्रा में थे, तो श्री संप्रदाय में भक्तों को शरणागति परम लक्ष्य बताया जाता है। और भगवान की शरणागति कितनी महान है इसके लिए वो 3 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उसको बोलते हैं चरम श्लोकी। चरम मतलब सबसे उत्तम, परम और श्लोकी। तो उसमें यही भगवत गीता के कुछ श्लोक हैं। एक श्लोक भगवत गीता से है, एक श्लोक रामायण से है और एक श्लोक वराह पुराण से है। तो उसमें एक एक करके बता रहे हैं कि कैसे जो भगवान की शरणागति लेते हैं उनको पूरा अभय, पूरी सुरक्षा और पूर्ण रूप से गारंटी है कि वो सफल होंगे। पहले भगवान भगवत गीता में ही कहते हैं, भगवत गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कह रहे हैं कि आप सब कुछ, सब चीजें, सारी अपनी शक्ति केवल मुझ में शरणागत हो, बाकी इधर उधर के धर्मों को छोड़ दो और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप सारे पाप कर्मों से मुक्त कर दूंगा, आप घबराइए मत। मां शुचा, भगवान कह रहे हैं मां शुचा, मत डरिए, मेरा आश्वासन है आपको। फिर ये है पहला श्लोक। उसके बाद रामायण में जब विभीषण स्वयं रावण के ग्रुप को छोड़कर भगवान राम के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आते हैं, तो बहुत सारे जो वानर सैनिक हैं जो डाउट करते हैं कि ये तो विपक्ष शत्रु दल का व्यक्ति है और जासूस भी हो सकता है, तो हम इसको कैसे अपने ग्रुप में शामिल करें। तो फिर बहुत ज्यादा मंत्रणा होती है। तो उसके बाद भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नो यस्तवास्मीति चयाचते अभयम सर्वदा तस्मयी ददामि एतद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं कि सब कुछ लेकर सकृदेव प्रपन्नो यस, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है और एक बार मुझे बस एक बार ये बोल देता है कि हे प्रभु मैं आपका हूं, तो ये मेरा व्रत है कि मैं उसको फियरलेसनेस, अभय प्रदान करूंगा। अभयम सर्वदा, और ऐसा नहीं कि एक बार करूंगा, हमेशा के लिए, सर्वदा सर्वदा उसको अभय मैं प्रदान करूंगा। तो ये भगवान का ऐसा व्रत लेते हैं भगवान कि अगर हम कोई भी भगवान की शरण में जाता है तो भगवान का ये व्रत है कि भगवान उसको 100% सुरक्षा प्रदान करते हैं। और फिर बहुत ही उससे भी ऊंचा श्लोक वो बताते हैं, इसको बताया गया 3रा श्लोक है वराह पुराण में, जिसमें भूमि देवी चिंता व्यक्त करती हैं वराह देव जी से कि जितने भी ये सारे जैसे हम सब भूमि देवी की संतान है, भूमि को सातवीं माता बोला गया है, तो 7 माताएं हैं हर प्राणी की, तो उसमें से एक माता भूमि देवी हैं। तो भूमि देवी वराह देव को बोलती हैं कि जो भक्ति कर रहे हैं इन सभी जितने भी बद्ध जीव हैं, जो मेरे संतान हैं, इनका उद्धार कैसे होगा, तो बहुत ही चिंतित होती हैं, व्यक्त करती हैं। तो वराह देव बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, और जैसे हम सुनते हैं भगवत गीता में कि भगवान कहते हैं कि जो मरने के समय मेरा चिंतन करेगा उसको निश्चित रूप से मेरा धाम प्राप्त होगा। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा उसको निश्चित रूप से क्या प्राप्त होगा, मेरा धाम प्राप्त होगा। परंतु यहाँ भी वराहदेव बिल्कुल बता रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है स्मरण करने की अंत काल में। वराहदेव बता रहे हैं कि स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सति यो नरा धातु साम्यास्थिते स्मर्ता विश्वरूपं च मामजं ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपाषाणसन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिं। बता रहे हैं कि वो मरने के समय की कोई चिंता मत कीजिए, जब शरीर स्वस्थ है, सुडोल है और पूर्ण रूप से चलायमान है, तब जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, स्थिते मनसि सुस्वस्थे, जब मन भी स्वस्थ है, सब शरीर सब ठीक ठाक चल रहा है, शरीरे सतियो नरा, और जो भी चीजें हैं सब मेरी स्मरण में वो लगा रहे हैं, तो ऐसे भक्तों के जब वो मरणासन होंगे तो मैं उनको स्मरण करूंगा, मैं उनका स्मरण करूंगा और मैं उनको याद दिलाऊंगा। प्रभुपाद जी भी ईशोपनिषद में अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान, अगर भक्त नहीं भी स्मरण कर पा रहे तो भगवान उनके मन में उनको स्मृति में, क्योंकि मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, भगवान कहते हैं मेरे से ही सारी स्मृति आती है, तो मैं उनको ये अपना स्मरण दिलाऊंगा। तो भक्तों को भगवान के इन सभी आश्वासनों से, अपने गुरुजनों से, आचार्यों से, शास्त्रों से सब कुछ सुनकर बहुत ही भगवान इस भक्ति की प्रक्रिया में बहुत श्रद्धा होती है। और भागवतम में बहुत ही और सुंदर श्लोक है, ये तो सब हमने चर्चा की अपवर्ग की। अपवर्ग मतलब इस भौतिक जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर जाकर भगवान के धाम वापस जाने की, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। परंतु मनुष्य जीवन में भी, भौतिक जीवन में भी जो भक्ति कर रहे हैं उनका कल्याण निश्चित है। इसके लिए भागवतम में बहुत ही सुंदर श्लोक है छठे स्कंद में, तो वो इस प्रकार से है, जिसमें ब्रह्मा जी बोल रहे हैं देवताओं को, याद नहीं आ रहा, पर उसमें बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो लोग भगवान, गौएं और ब्राह्मण, इन तीनों की शरण लेते हैं तो उनका किसी प्रकार से अमंगल नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही सुरक्षित मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, जिसमें भक्त बहुत ही आश्वासन से लगते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि भक्ति में आशाबद्ध रहने से कितना मतलब भक्तों ने कितना अपना आशा प्रकट की है। तो सबसे पहला उदाहरण तो हम देखते हैं शबरी का। जो शबरी, हम जानते हैं कि मतंग ऋषि की जो शिष्या थी, तो वो बहुत ही दृढ़ रूप से अपने गुरु की सेवा करती थी। तो मतंग ऋषि अंतर्धान होने से पहले उन्होंने शबरी को बताया कि यहाँ पर परम भगवान राम आएंगे, तो आप उनका अच्छे से स्वागत करना और उनकी सेवा करना। तो अब शबरी प्रतिदिन इस आशा में रहती थी कि आज भगवान राम आएंगे। तो वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपने आश्रम का बुहारती थी, साफ सफाई करती थी, तो परंतु भगवान नहीं आए। तो ऐसे बहुत समय तक, चिरकाल तक चलता रहा। परंतु फिर जब भगवान सीता माता को ढूंढते हुए, जब सुग्रीव जी से उनकी भेंट होने से जस्ट पहले पंपा सरोवर के पास में वो शबरी जी के आश्रम में जाते हैं भगवान। और शबरी हमेशा हर रोज बिल्कुल उत्साह से वो यही आशा लगाती हैं कि आज भगवान आएंगे। वो कभी निराश नहीं हुई कि ये अभी आज नहीं आए, 10 दिन 20 दिन 30 दिन तो फिर वो बैठ जाएं, ऐसा नहीं था। वो बिल्कुल आशाबद्ध थी कि गुरु ने बोला है तो निश्चित रूप से ये होगा। तो वो समय चिरकाल तक वो ऐसे अपने आश्रम को साफ सफाई, भगवान के लिए जो भी भोग अर्पित करने के लिए, जितना भी सामग्री आतिथ्य के लिए, सेवा के लिए, उनके वेलकम के लिए वो रखती थी। तो फिर भगवान जब आए लक्ष्मण के साथ, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से उनको रिसीव किया। तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि वो हमें होपफुल थी, आशाबद्ध थी और गुरु के वाक्यों में पूरी श्रद्धा थी, इसीलिए वो भगवान उनके पास गए। फिर हम बहुत ही विशेष रूप से ये भी दूसरा उदाहरण है रुक्मिणी जी का, कि जब रुक्मिणी जी जो उनका विवाह शिशुपाल से तय हो गया था तो फिर बहुत ही चिंतित थी वो, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और भगवान कृष्ण के अलावा और किसी को वो स्वीकार नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथों एक पत्र भेजा, मतलब पुराणों में भी है, भागवत में है बल्कि, कि पत्र व्यवहार द्वारा, मतलब लव लेटर भी होते हैं, तो ये उन्होंने भेजा तो भगवान श्री कृष्ण को फर्स्ट लव लेटर। तो फिर उसमें उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना की, बहुत सुंदर अपना संदेश दिया और वो पूरा स्ट्रेटजी बताती हैं कि आप कैसे आइए, मुझे किडनैप कीजिए और मैं आपसे बहुत अट्रैक्टेड हूँ, बहुत बहुत, मतलब उस समय वैदिक सभ्यता में इस प्रकार से कोई जो स्त्री है वो ऐसे अपनी इच्छा व्यक्त करना, इसको सांस्कृतिक रूप से सही नहीं माना जाता था। लेकिन वो कह रही हैं कि मैं बेशरम हो गई हूँ, पर मेरे को बहुत आपको प्राप्त करना ही है और बहुत ही अर्जेंट है, मेरी विवाह निश्चित हो गया है, तो आप इसका कुछ कीजिए। और फिर वो कहती हैं कि लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं, क्योंकि आपको प्राप्त करने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि देवी देवता शिवजी ये सब भी लगे रहते हैं लेकिन इनको प्राप्त नहीं होता, तो मैं तो तुच्छ हूँ, तुच्छ जीव हूँ। तो फिर वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बताते हैं, एक सुंदर श्लोक है उनके इस लेटर का, लास्ट श्लोक है, उसमें वो कह रही हैं, यस्यांग्रि पंकज रजस्नपनम महांतो वांछन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यय्याम्बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादम् जय्याम सूनव्रत कृशान शत जन्म भी स्यात्। ये भागवतम के 10वें स्कंद के 52वें अध्याय का 43वां श्लोक है, इसका अनुवाद इस प्रकार से है, हे कमल नयन, शिवजी जैसे महात्मा आपके चरण कमलों की धूलि में स्नान करके अपने अज्ञान को नष्ट करना चाहते हैं, यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती तो मैं अपने उस प्राण को त्याग दूंगी जो मेरे द्वारा की जाने वाली कठिन तपस्या के कारण क्षीण हो चुका है होगा। तब कहीं सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। देखिए वो क्या कह रही हैं, वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ती, वो कहते हैं तब कहीं सैकड़ों जन्मों तक परिश्रम करने के बाद शायद आपकी कृपा प्राप्त हो सके। उनको पूरा विश्वास है कि भगवान कृपालु हैं और कृपा करेंगे, पर मैं योग्य नहीं हूं, तो हो सकता है मुझे योग्यता प्राप्त करने के लिए सैकड़ों जन्म लगे, पर निश्चित रूप से कृपा प्राप्त होगी। तो हर भक्त को इसी प्रकार से सोचना चाहिए। और फिर हम देखते हैं हमारे जो संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, क्या तो पूरा जीवन ही इस होपफुल भगवान की और गुरु के वचनों में श्रद्धा इसी पर निर्भर है। तो मैं बहुत ही विचार कर रहा था इसमें, तो थोड़ा सा प्रभुपाद जी के जीवन से मैंने ये देखा कि सबसे पहले जिसे हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने भगवद गीता का पूरा एक तात्पर्य लिखा, पूरी कमेंट्री लिखी। तो उस कमेंट्री को लिखने के बाद वो पब्लिशर ढूंढ रहे थे, ये उनके गृहस्थ आश्रम के दिनों की ही बात है। तो फिर वो पब्लिशर ढूंढ रहे थे, पूरे पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे कि कोई इसके लिए सहयोग करे और पब्लिश कराए। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास वो जाते हैं लेकिन इतना अच्छा उनको रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होता। पर फिर करते करते मद्रास में एक व्यक्ति होते हैं अलगप्पा, तो अलगप्पा जी तैयार हो जाते हैं प्रभुपाद जी की भगवद गीता को प्रकाशित करने के लिए। तो जब तैयार हो जाते हैं कहते हैं ठीक है अब आप अपनी लिपियां मुझे दिखाइए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो प्रभुपाद बहुत खुश होते हैं और बहुत ही उत्साह से, बहुत ही खुशी से अपने घर कलकत्ता जाते हैं। कलकत्ता जाते हैं, वहां ढूंढते हैं, पूछते हैं अपनी भाग्या से, तो कहते तो उनको पता चलता है कि उनकी इतनी मेहनत से जो उन्होंने भगवद गीता का पूरा कमेंट्री लिखा था वो क्या होता है रद्दी के भाव में बेच दिया और उसके बदले में कुछ चाय खरीद ली, कुछ बिस्किट खरीद लिए। तो उनको लगता है कि अब कोई भी सोच सकता है कि भगवान अल्टीमेटली कंट्रोलर तो भगवान है, ये तो जो मेरी पत्नी है ये तो मूर्ख है, तो भगवान ने कैसे ऐसे होने दिया। पर उन्होंने ऐसा ब्लेम नहीं किया भगवान को, उन्होंने स्वीकार किया और फिर दोबारा लिखा पूरी। ऐसा नहीं था कि हमारे तरह अभी तो जैसे हमारे पास सॉफ्ट कॉपी होती है या हम फोटो तो खींच ही लेते हैं कि किसी भी चीज की, लेकिन उस समय पूरा लिखा दोबारा से। इसे कहते हैं प्रभुपाद जी का दृढ़ संकल्प और पूरा विश्वास कि भगवान की कृपा प्राप्त होगी, इसलिए वो धैर्य से और उत्साह से सेवा कर रहे थे। फिर हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश को पर पूरे पाश्चात्य जगत में जो प्रचार है, इतना बड़ा प्रचार कैसे सेटअप किया। तो प्रभुपाद जी अपने घर में जब उनका कोऑपरेशन नहीं बना अपने घर वालों के साथ कि वो प्रचार करना चाहते थे और घर वाले कोई सहयोग नहीं कर रहे थे, तो फिर उन्होंने अलग होकर फिर लीग ऑफ डिवोटीज, पूरा अपना ध्यान अपने घर के कार्यों से हटाकर लीग ऑफ डिवोटीज झांसी में स्थापित किया, और उसमें थोड़ा थोड़ा उनको कुछ सफलता प्राप्त हो भी रही थी। उनकी एक सोसाइटी इनकॉर्पोरेट हो गई, उन्होंने चार्टर भी बना दिया, उसके कुछ रिजोल्यूशन भी लिख दिए, कुछ फाउंडर मेंबर भी हो गए थे, और एक व्यक्ति को दीक्षा भी दे दी थी प्रभुपाद जी ने, जो सबसे पहले उनके शिष्य थे, उनकी दीक्षा भी उन्होंने झांसी में दे दी थी। पर अंत में फिर क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा विफलता देखनी मिलती है कि कोई इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिशियन की कोई मतलब वाइफ होती है, कोई होता है, वो उनके वो कहते हैं कि महिला समिति के लिए ये बिल्डिंग हम यूज करेंगे, कि महिला समिति का कोई बनाएंगे फेडरेशन। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जागरूक करना लोगों को, प्रचार, इस गीता का प्रचार करना, ये ज्यादा अर्जेंट है ये संदेश। महिला समिति के लिए तो बहुत सारी बिल्डिंग है और बन भी सकती है, तो लेकिन फिर प्रभुपाद जी को बहुत ही बड़ी विफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी निराश नहीं हुए, फिर प्रभुपाद जी आ गए अपने अपने गॉड ब्रदर्स जो उनके केशव महाराज थे मथुरा में, तो उनके मठ में आए और उनको एक्चुअली प्रभुपाद जी के जो जितने भी गुरु भाइयों का जो समूह था उनमें अभय बाबू को बहुत बड़ा विद्वान और लेखक समझा जाता था, और शिला भक्तिदान सेवक ठाकुर जी से भी उनको आशीर्वाद प्राप्त था कि जो भी अभय लिखे उसे छापिए। तो अब उनके जो गुरु भाई थे वो प्रभुपाद जी को कहते थे कि आप हमारी ये जो मैगजीन है मैगजीन उसको आप एडिट कीजिए। तो प्रभुपाद जी को लगा कि ठीक है, ये भी प्रचार का एक माध्यम है। प्रभुपाद जी के अंदर बहुत ही प्रचंड अग्नि थी प्रचार करने के लिए, अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने गुरु भाइयों के मठ के, क्योंकि अकेले होने से अच्छा है अपने गुरु भाइयों के संरक्षण में रहते हुए उनके मठ में सेवा करना। तो फिर उन्होंने उनकी एडिटिंग करना शुरू किया। तो फिर केशव महाराज जी ने मथुरा में उनको ये कार्य दिया, तो दिल्ली में एक और उनके गुरु भाई, उनका नाम नहीं याद आ रहा, तो उन्होंने कहा कि आप हमारी मैगजीन भी एडिट कीजिए सज्जन तोषणी। तो उन्होंने कहा, तो फिर एक तरह से उनके दो गुरु भाइयों, दोनों सन्यासी गुरु भाइयों के बीच में प्रतिस्पर्धा हो गई कि कौन प्रभुपाद जी की सेवा का लाभ उठाएगा। तो फिर प्रभुपाद जी, तो फिर जो केशव महाराज हैं वो मान गए, ठीक है आप दिल्ली जाइए पर यहाँ आप हमारी मैगजीन का भी एडिटिंग करेंगे वहां से, दिल्ली से। तो ठीक है, तो फिर प्रभुपाद जी गए वहां पे सज्जन तोषणी की एडिटिंग शुरू की। दो महीने तक उन्होंने बहुत प्रयास किया, और प्रभुपाद जी का देखिए क्या विजन होता था। जब प्रभुपाद जी को पता लगा कि उनको सज्जन तोषणी का एडिटर बनना है, तो पहले जो सज्जन तोषणी उनके जो दिल्ली में जो मठ था उसके द्वारा जो प्रकाशित होती थी उसकी प्रति महीने 500 प्रतियां प्रकाशित होती थी बस, और बहुत ही सिंपल सा, मतलब इतना कोई बहुत मामूली सा पेपर होता था। तो प्रभुपाद जी का देखिए क्या दृष्टिकोण होता था। प्रभुपाद जी की इच्छा थी भगवान का प्रचार बहुत ही बड़े स्तर पे होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि सज्जन तोषणी को हमें जो है पूरे वर्ल्ड की जो सबसे महत्वपूर्ण मैगजीन है टाइम मैगजीन उधर तक पहुंचाना है। देखिए इतनी विफलताएं हो चुकी हैं, पहले उनको लीग ऑफ डिवोटी से विफलता मिल गई है और भगवत गीता का भी उनका वैसा हो चुका है। तो अब ये प्रभुपाद जी का विजन लेकिन बहुत बड़ा था, तो फिर प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए भगवान तो कोई दरिद्र व्यक्ति है नहीं, तो कृष्णा इज नो पुअर मैन, तो हम भगवान का गुणगान करने का बहुत प्रचंड प्रचार करने का प्रयास करेंगे, तो भगवान हमें जरूर सहयोग करेंगे। तो फिर उन्होंने अपने गुरु भाई से बताया कि मेरे ये आइडियाज हैं, हम दिल्ली में इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने धनी लोग हैं, उनको हम सब्सक्राइब करेंगे, उनसे एडवर्टाइज कराएंगे, पूरा इसका प्रोपेगेंडा करेंगे, कलर्ड पेज रखेंगे और ऐसे ऐसे हम करेंगे। तो उनके जो गुरु भाई थे उन्होंने कोई ज्यादा इसमें रुचि नहीं दी, बल्कि क्या हुआ, उनके गुरु भाई कलकत्ता चले गए और उनको कहा कि आप दिल्ली से प्रकाशित कीजिए, लेकिन कोई भी संस्करण प्रकाशित करने से पहले मेरी परमिशन पूरी होगी। तो वो कलकत्ता से होके आता था जो भी एडिटिंग, मतलब कोई भी संस्करण। तो फिर क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने बोला अपने गुरु भाई को पत्र व्यवहार में बोला कि देखिए हम रोज हर महीने 500 करते हैं, तो मैंने प्रिंटर से बात कर ली है कि वो उतने ही मूल्य में 1000 कॉपी छाप देगा, और मैंने डोनेशन भी रेज कर लिया है किसी पोस्ट कार्ड के लिए और अलग अलग चीजों के लिए, ताकि हमारा जो ये जो हमारा सज्जन तोशनी का प्रोजेक्ट है ये बहुत विस्तार से बढ़ सके। तो क्यों उनकी तरफ से ऑर्डर था कि सिर्फ 500 प्रतियां ही छापनी है, तो उन्होंने कहा, प्रभुपाद जी ने कहा कि केवल कुछ पेपरों को बचाने के लिए हम भगवान का गुणगान क्यों रोकें। तो फिर इतना बड़ा प्रभुपाद जी ने जब पूरा प्रपोजल लिख के भेजा तो एक छोटे से पोस्ट कार्ड में उत्तर आता है केवल 500 प्रतियां ही छापें, बस। मतलब प्रभुपाद जी ने सब कुछ कर लिया है, ना तो लक्ष्मी लगेगी, वो प्रिंटर 500 की जगह 1000 भी उतने पैसे उतने ही लक्ष्मी में छाप देगा, परंतु उनके गुरु भाई का रिप्लाई आता है 500 ही प्रतियां छापें। तो फिर ये भी एक तरह से प्रभुपाद जी को एक सेटबैक, लेकिन फिर प्रभुपाद जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। फिर प्रभुपाद जी अलग हो गए, और मतलब उनको बोला गया कि आप अलग ही हो जाओ, उनके गुरु भाई की तरफ से लेटर आया, उनके गुरु भाई के सेक्रेटरी ने लेटर दिया कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, और हमें लगता है हमारा जो मठ है ये आपकी प्रगति में इतना सहयोग नहीं कर पाएगा, तो हमें पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आपकी जिस प्रकार की विजन है और महत्वाकांक्षाएं हैं, तो आप निश्चित रूप से एक स्वतंत्र महान प्रचारक बनेंगे। तो एक इस प्रकार के फ्लावरी वर्ड्स के द्वारा उन्होंने बोला ठीक है, आप अब हमें आज्ञा दी, मतलब आप हमसे आज्ञा लीजिए, आप जाइए। तो फिर प्रभुपाद जी, ऐसी स्थिति आ गई थी कि दिल्ली में प्रभुपाद जी के पास रहने के लिए, भोजन के लिए और पहनने के लिए, ये सबसे कठिन समय था प्रभुपाद जी के जीवन में। लिखते हैं ससुर महाराज कि बचपन से लेके आज तक प्रभुपाद जी को कभी इस प्रकार की कठिनाई नहीं सामना करनी पड़ी। प्रभुपाद जी अपने माता पिता के सबसे प्रिय संतान थे, और ना तो कभी खाने की कमी थी, ना कुछ पहनने की, और रहने की तो कहना ही क्या। प्रभुपाद जी इतनी बड़ी बिजनेस था, प्रभुपाद जी अलग अलग जगहों पर जाके रहते हुए थे, ट्रैवल करते, लेकिन ये जो समय था इसमें फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन तीनों के लिए प्रभुपाद जी को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था। कभी एक हफ्ते एक व्यक्ति के घर पे, एक हफ्ते किसी कॉलेज के रूम में, ऐसी ऐसी स्थिति में। लेकिन यहाँ पे ससुरूप महाराज लिख रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का लक्ष्य ये नहीं था कि अपने लिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, खाना, रहना, ये सब अरेंज करना। उनका लक्ष्य था भगवान के साहित्य को छापना, और वो इसके लिए लोगों से मिलते थे, लोगों को अपनी मैगजीन दिखाते थे, लोगों को अपना जो मैन्यूस्क्रिप्ट, उन्होंने चैतन्य चरितामृत का एक हिंदी संस्करण भी शुरू किया था उन दिनों। तो ऐसे प्रभुपाद जी इतना संघर्ष कर रहे थे, लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं थे। और फिर ऐसे करते 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 प्रभुपाद जी धीरे से उन्होंने फिर निर्णय, फिर वृंदावन गए, फिर वृंदावन से उन्होंने भागवतम का पूरा प्रिंट किया, पूरा फर्स्ट कैंटो की तीन वॉल्यूम्स निकाली, और फिर प्रभुपाद जी निर्णय किया अब मुझको पाश्चात्य जगत में जाना चाहिए, और मेरी आयु भी बढ़ रही है तो ये गुरु की आय का पालन करना है। तो फिर प्रभुपाद जी बड़ी कठिनाई से उनको टिकट मिलता है पाश्चात्य जगत जाने के लिए। हम सब जानते हैं कि सुमती मुरारजी जी के गेट, ऑफिस के गेट के बाहर प्रभुपाद जी 4 घंटे वेट करते हैं, फिर उनसे थोड़ा वार्तालाप होता है, तब जाके वो मानती हैं। फिर ये टिकट के बाद वीजा और फिर इनविटेशन भी होना चाहिए अमेरिका से, कि कोई बुलाएगा तभी हम जा सकते हैं। और ये सब होने के बाद भी एक चीज रह गई, वो थी पी फॉर्म, जो बैंक था वो, कि भाई कोई ड्यू नहीं है, कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर जाता है तो नो ड्यूज इश्यू होता है, तो कोई ड्यू नहीं है तो पी फॉर्म इश्यू नहीं हो रहा, उसके लिए इतना संघर्ष। तो प्रभुपाद जी को पग पग पे इतना संघर्ष का सामना करना पड़ता था। कोई भी सामान्य व्यक्ति होता है तो वो इस स्थिति में पूरी हिम्मत तोड़ दे, बोले भगवान मैं आपका प्रचार कर रहा हूँ और आप कोई सहायता नहीं कर रहे। तो फिर भी ये सभी संघर्षों के बाद भी प्रभुपाद जी लगे रहे, और फिर यही इतना ही नहीं, फिर उनको हार्ट अटैक भी आए। फिर हम सभी जानते हैं पहले साल में उन्होंने कितना संघर्ष किया न्यूयॉर्क में। पहले वो डॉक्टर मिश्रा जो एक मायावादी थे उनके उनके साथ रहे, फिर एक उन्होंने छोटा सा कमरा लिया जहाँ पे उनके टाइपराइटर की चोरी हो गई और बहुत कठिनाई से। फिर बौरी में डेविड ने उसके उनके ऊपर हमला किया। फिर करते 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 वो एक 26 सेकंड एवेन्यू जहाँ पे पहला इस्कॉन का केंद्र की इनकॉर्पोरेशन हुई वहां पे पहुंचे। और उसका भी क्या था कि एक महीने का किराया ही जमा था, ये नहीं पता था कि अगले महीने किराया कैसे आएगा। और उसमें हमने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो अंतरराष्ट्रीय, जो ये छोटा सा लॉफ्ट है किराए पे है जिसका किराया भी नहीं पता अगली बार कैसे आएगा, इतनी आशा है उनको। तो ये है भक्तों की आशा। और फिर बहुत ही सुन, तो भक्तों को भगवान की और गुरु के वचनों में आज्ञा में इतना भरोसा होता है कि निश्चित रूप से ये होगा। जैसे चैतन्य महाप्रभु को था क्या भविष्यवाणी है, पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत प्रचार है बे मोर नाम। तो प्रभुपाद जी से पहले जितने भी आचार्य थे या जितने भी उनके गॉड ब्रदर थे कॉन्टेम्पररी भक्त थे, उनको लगता था कि ये जो है पृथ्वी ते आचे ये पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं है, ये सिर्फ भारत के लिए, ये शायद ये सिंबॉलिक रूप से बोला जा रहा है। लेकिन प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि ये होगा, और इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरा इसमें अपना एफर्ट दिया पूरी और श्रद्धा से, और आज देखिए कितना बड़ा चमत्कार हो गया है। और फिर एक सबसे आखिरी एक उदाहरण ये है मुकुंद का, कि हम देखते हैं कि मुकुंद जो है वो चैतन्य लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही संगी हैं, पार्षद हैं। तो जब अष्ट प्रहरी महाप्रकाश लीला होती है तो महाप्रभु सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको कृष्ण प्रेम दे रहे होते हैं, लेकिन मुकुंद को वो नहीं बुला रहे। तो बहुत ही सुंदर प्रसंग है, इसमें 5 मिनट और लेंगे। उसमें मुकुंद का बहुत ही सुंदर वर्णन है कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त होती है। तो हम पढ़ते हैं, मुकुंद को जब चैतन्य महाप्रभु नहीं बुला रहे थे तो भक्तों ने पूछा कि आप मुकुंद को क्यों नहीं बुला रहे। तो महाप्रभु ने कहा कि मुकुंद एक कभी तो भक्ति को मानता है तो और कभी कभी जो है मायावादी को मानता है, तो उसका जो विश्वास है वो पक्का नहीं है। तो इसीलिए तो मुकुंद जब इस प्रकार सुन रहे थे तो मुकुंद ऐसे सोचते हैं बाद में, मन में बाहर से सुन रहे थे वो अंदर नहीं गए थे। मने चिंते मुकुंद परम भागवत ए देख राखी ते मोरा नहाया युकत। द एग्जॉल्टेड वैष्णव मुकुंद थॉट, मुकुंद ने सोचा कि मुझे अपना जीवन रखने का कोई जरूरत नहीं है और मेरे को अपने इस अपराधी शरीर का त्याग कर देना चाहिए। और इस प्रकार से जब वो सोच रहे थे तो भक्तों ने अंदर पूछा भगवान से कि कैसे उनका कोई उपाय, कभी आपका दर्शन हो, कभी उनको कृपा मिले। तो भगवान कहते हैं, प्रभु बोले, आर यदि कोटि जन्म हया तबे मोरा दर्शन पाई बे निश्चय। भगवान कहते हैं करोड़ों जन्मों के बाद निश्चित रूप से उनको मेरा दर्शन प्राप्त होगा, निश्चित रूप से। तो जब ये सुनते हैं मुकुंद जब ये सुनते हैं तो क्या करते हैं, सुनील निश्चय प्राप्ति प्रभु र श्री मुखे मुकुंद सिंचित हैलापरानंद सुखे पाई बा बली करे महानृत्या प्रेमे ते विवल हैला चैतन्य रभृत्या। जैसे मुकुंद ने सुना कि भगवान ने आश्वासन दे दिया कि हाँ जी आप मुझे उनके दर्शन प्राप्त होंगे, वो पूर्ण आध्यात्मिक आनंद में मग्न हो गए और जोर जोर से नृत्य करने लगे। महानृत्य बोला गया यहाँ पे कि मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। और इस प्रकार से जोर जोर से वो जब नृत्य करने, उतना उनका विश्वास था कि चाहे 1 करोड़ जन्मों के बाद ही क्यों ना हो, भगवान की वाणी है तो सत्य आएगी। तो इस प्रकार से वो जब नृत्य कर रहे थे तो फिर भगवान जो स्वयं सब कुछ जानते हैं तो भगवान उनको बुलाते हैं और कहते हैं, प्रभु बोले मुकुंद घुचीला अपराध ऐसा आमारे देखा धरह प्रसाद। भगवान कहते हैं मुकुंद आप सभी अपराधों से मुक्त हो, आइए और मेरी कृपा प्राप्त कीजिए। प्रभु र आज्ञा या सब आनीला धरिया पड़ीला मुकुंद महापुरुष देखिया। भगवान के आदेश से भक्त मुकुंद को लेके आए और भगवान को देखकर वो जमीन पर गिर गए। तो इस प्रकार से देखिए आशा, भगवान की कृपा पर आशा होने से जो करोड़ों जन्मों के बाद होना था वो तत्क्षण हो गया। तो इसीलिए जो भक्त हैं उनको पूरी आशा होती है भगवान की कृपा पर। तो अब हम बस इसका विराम करेंगे, इसका निष्कर्ष देके कि ये इस प्रकार का जो गुण है, गुण श्रद्धा और आशा, ये कैसे विकसित कर सकते हैं। ये हम विकसित कर सकते हैं, प्रोपाइज आते हैं, ये श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा का विकास होता है भक्ति करने से और भगवान के नामों का जप करने से। ऐसा प्रभुपाद जी अपनी भगवद्गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रद्धा का विकास होता है भक्ति करने से और भगवान के नामों का जप करने से और श्रद्धालु भक्तों का संग करने से। इसलिए जब हम श्रद्धालु भक्तों के संग में होते हैं, जिनको इस प्रकार की आशा है, जब उनका संग करते हैं, उनका चरित्र पढ़ते हैं और ऐसे विषय में जब हम बार बार श्रवण कीर्तन करते हैं और शास्त्रों की इन जो उक्तियां हैं इनको सुनते हैं कि भगवान जगह जगह आश्वासन दे रहे हैं, तो हमारा ये दृढ़ निश्चय, ये आशा भगवान में बढ़ती जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा ऊपर हो गया समय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।